आज का आपका टॉपिक है क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम या एक्टिविटी करिकुलम। इस क्रिया केंद्रित पाठ्यचर्या का आशय उस पाठ्यचर्या से है जिसमें बालक को विभिन्न क्रिया केंद्रित कार्य करने पड़ते हैं। इसमें बच्चे से विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों के लिए प्रेरित किया जाता है। इस पाठ्यचर्या के माध्यम से हम बालकों को समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शिक्षा द्वारा प्रेरित करते हैं। ये जो क्रिया केंद्रित पाठ्यचर्या है, इसकी परिकल्पना सबसे पहले प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री पेस्टोलॉजी ने की थी, किंतु इस पाठ्यचर्या को आगे बढ़ाने का या वास्तविक स्वरूप देने का श्रेय जॉन डीवी महोदय को जाता है, जिन्होंने प्रयोगात्मक विद्यालय या लेबोरेटरी स्कूल के माध्यम से सर्वप्रथम क्रिया केंद्रित पाठ्यचर्या का प्रयोग किया। इस प्रयोगात्मक स्कूल में पाठ्यचर्या का विषय ज्ञान पर आधारित नहीं होता, बल्कि उसके स्थान पर सामाजिक, रचनात्मक, प्रयोगात्मक एवं अभिव्यक्ति जन्य जो तमाम तरह के कलात्मक कार्य होते हैं, कलात्मक गतिविधियां होती हैं, उन पर सम्मिलित किया जाता है। रचनात्मक कार्य उनसे कराए जाते हैं जिससे बच्चे की क्रियाशीलता में वृद्धि हो। मात्र वह निष्क्रिय श्रोता न बन करके वह क्रियाशील रहे और क्रियाशील होकर के वह अपने कार्य को करता जाए। यह प्रविधि जो है वह बच्चों को निम्नलिखित अवसर देती है, जैसे विषय वस्तु पर आपस में बातचीत करने और सुनने के लिए, या व्याख्यान सुनने एवं नोट लेने के स्थान पर स्वयं करके सीखने की प्रवृत्ति पर, या व्यक्तिगत अथवा छोटे समूह में सीखने, पढ़ने एवं चिंतन करने, या कक्षागत जो गतिविधियां हैं उनमें सक्रिय सहभागिता करने का, या क्रियाकलाप या गतिविधि आधारित अध्ययन हेतु उनको उत्प्रेरित करने का, अभिप्रेरित करने का। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम की बहुत सारी बातें हैं जो बच्चे को अवसर देती हैं कि इस तरह के कार्य को करो। इसका जो प्रयोग है, इस प्रविधि का प्रयोग तमिलनाडु में सन 2007-08 से शिक्षण प्रक्रिया में किया गया था, जिसके अच्छे परिणाम हमारे सामने आए। और इस विधि के प्रयोग से विद्यार्थियों में समझने की शक्ति, अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी का विकास होता है, और उन्हें स्वतंत्र रूप से विचार व्यक्त करने का, सक्रिय रहने का, रचनात्मक रहने का अवसर भी प्राप्त होता है। इस विधि के द्वारा शिक्षण में जो विद्यार्थी प्रस्तुतीकरण एवं नेतृत्व का गुण होता है विद्यार्थियों के अंदर, वह विकसित होता चलता है, और इस प्रकार से सक्रिय अधिगम प्रवृत्ति द्वारा शिक्षण से विद्यार्थियों का बहुमुखी विकास होता चलता है। अगर हम सक्रिय अधिगम प्रकृति को समझें तो इसकी दो मूलभूत मान्यताएं हैं। पहला है, सीखने की प्रकृति एक सक्रिय प्रयास है, आप जानते ही हैं। दूसरी बात है, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीके से सीखते हैं। ये बात कही है मेयर जोन्स महोदय ने 1993 के मतानुसार, 1993 के। अब एक बात ये आती है कि जो सक्रिय अधिगम प्रविधि है, इस सक्रिय अधिगम प्रविधि में बच्चा मात्र निष्क्रिय श्रोता ना बन करके वह रचनात्मक तरीके से, प्रयोगात्मक तरीके से, प्रैक्टिकल वे में कार्य करता है, और वो जब उसमें अपने छात्र अपने पाठ्यक्रम के साथ वो सक्रिय रहता है तो आराम से उस चीज को अपने अंदर आत्मसात करता चलता है। तो ये जो सीखने की एक सक्रिय प्रयास विधि है, सीखने की प्रकृति एक सक्रिय प्रयास विधि है, इसके द्वारा हम बच्चे को प्रैक्टिकल वे में ले जा सकते हैं, उसमें रचनात्मक शक्ति का विकास करते हैं। और दूसरी जो बात मैंने आपको बताई कि व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार प्रत्येक बच्चे में अलग अलग विशेषताएं होती हैं, तो जो अलग अलग विशेषताएं होंगी तो वो अपने अपने तरीके से उस चीज को सीखेगा। जैसे कोई जल्दी सीखता है, कोई तेज सीखता है, कोई रचनात्मक चीजों को सीखता है, कोई बिना रचनात्मक चीजों के माध्यम से सीखता है, और जिसको जिस चीज में रुचि होती है, जिस विषय में, उस तरीके से बच्चा उस कार्य को करता है। कोई डायग्राम बना के अच्छा पढ़ा लेता है, कोई एक्सप्लेन कर लेता है, तो ये सारी चीजें। अब हम देखते हैं कि ये जो क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम है, इस क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम में बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए तमाम तरह के कार्यों का आयोजन किया गया और इस पाठ्यक्रम में जो रचनात्मक कार्य के कारण होते हैं तो समाजोपयोगी कार्य के लिए इसमें एक प्रेरणा बन गई। जॉन्डीवी महोदय ने भी कहा है इस संबंध में, क्या कहा है कि ज्ञान क्रिया का परिणाम है ना कि उसका मार्गदर्शक। कार्य ही ज्ञान का मुख्य स्रोत है, क्रिया अनुभव से पूर्ण की जाती है, अतः अनुभव ज्ञान एवं अधिगम क्रिया का ही परिणाम है। जब हम थ्री पोलर प्रोसेस की बात करते हैं तो वहां हम देखते हैं कि जॉन डीवी का जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, शिक्षक शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, तो जो उस पाठ्यक्रम पे सेंटर्ड हम होते हैं तो उस सेंटर्ड पाठ्यक्रम में एक्टिव होने के कारण बच्चा किसी भी चीज को आसानी से सीख सकता है, वो इसके लिए मनोरंजक और आरामदायक होती हैं। इस क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम में कुछ बातें हैं, कुछ खासियत है, विशेषताएं हैं जो कि मैं आपको बताऊंगी। जैसे सबसे पहला है कि बालकों की रुचियों एवं अभिरुचियों पर आधारित होने के कारण यह बाल केंद्रित पाठ्यचर्या है और बच्चे इसको पसंद करते हैं। दूसरी बात आपकी आती है कि विषय वस्तु का चयन जो होता है वो वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया जाता है। जैसे कहा जाता है कि पाठ्यक्रम किसके लिए, पाठ्यक्रम समाज के लिए, पाठ्यक्रम सामाजिक कुशलता के लिए कार्य करे तो अच्छा पाठ्यक्रम माना जाएगा। तो ये जो चीज है इसमें जो समाज की जरूरतें हैं, समाज की परिस्थितियां हैं, उनको ध्यान में रख करके इस कार्य को किया जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं कि इस समय कोरोना फैला हुआ है तो महामारी के इस प्रकोप को फैलने के कारण तमाम तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। अब इस समस्या से दो चार होने के लिए आवश्यकता पड़ती है कि पाठ्यचर्या में उन चीजों को भी शामिल किया जाए जो कि हमें अभिप्रेरित करें कि कभी भी आपके आगे आकस्मिक ऐसी कोई स्थिति आ जाए तो आप उसको निबटने के लिए, उससे निबटने के लिए, उसका सामना करने के लिए जीवन में क्या क्या कर सकते हैं। तो अगर पाठ्यक्रम में इस चीज को डाल दिया जाए तो प्रत्येक बच्चा इसको पढ़ेगा, उसको अप्लाई करेगा और उसके अनुकूल स्वयं को बनाने का प्रयास करेगा और समाज को सहयोग देने की बात भी करेगा। तो ये चीज। अगली बात मैं आपको बताती हूँ कि जो ये क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम है यह मानव की प्रगति के लिए, मानव के प्रोग्रेस के लिए क्रियाशीलता के महत्व पर ध्यान केंद्रित करता है। इसके अतिरिक्त अधिगम एवं अनुभव का एकीकरण इसमें सरलता से किया जा सकता है। इसके बाद अधिगम अनुभवों में पर्याप्त विविधता के कारण शिक्षा के व्यापक क्षेत्र को प्रभावित भी करता है। अब इस क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम में कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो आपको उद्देश्य की ओर ले चलती हैं। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं कि अधिगम प्रक्रिया को भी शिक्षक केंद्रित होने के कारण बाल केंद्रित बनाने पर इसमें बल दिया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सक्रिय अधिगम हेतु उपयुक्त वातावरण का निर्माण किया जाता है। फिर बालकों को शिक्षक का व्याख्यान सुनने, उसे लिखने के स्थान पर खुद कुछ करने के लिए प्रेरित किया जाता है और प्रक्रिया में उनका सक्रिय योगदान सुनिश्चित भी किया जाता है। अगली बात आपकी है कि जो सीखने की प्रक्रिया है उसमें समस्त विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करता है। तो इस तरह से ये थोड़ा सा अलग से पाठ्यक्रम हुआ हमारा। बालकों के मध्य जब वो सक्रिय होकर किसी कार्य को करते हैं तो जो उनकी तमाम सद्भावनाएं होती हैं, परस्पर सहयोग की भावना इत्यादि, सहानुभूति इत्यादि का विकास होता है और उनमें पढ़ने एवं सीखने की मूलभूत रचनाओं का भी विकास होता है। फिर सृजनशीलता, रचनात्मकता या सृजनात्मकता जिसको कि आप जानते हैं, उसका विकास, इस उसकी अभिव्यक्ति का विकास करने की बात भी इसमें आती है। इसके अतिरिक्त जब हम ग्रुप में काम करते हैं, समूह में कार्य करते हैं तो समूह में कार्य करने के पर्याप्त अवसर देते हुए भी बालक की जो आत्म अभिवृद्धि है, अर्थात व्यक्तिगत रूप से बच्चा अगर आगे बढ़ना चाहे तो उसके लिए भी टीचर का सहयोग रहता है, माहौल का सहयोग रहता है, पाठ्यचर्या का सहयोग रहता है, तो उसके लिए भी सतत अवसर उसको मिलते चलते हैं। इसके अतिरिक्त बालकों में उच्च स्तरीय अधिगम प्रक्रियाएं हैं, जैसे संश्लेषण विधि, विश्लेषण, मूल्यांकन विधि इत्यादि गुणों का विकास होता चलता है। फिर बालकों में प्रभावी प्रस्तुतीकरण की दक्षता की भावना का विकास होता है। आप देखते हैं कि बच्चों में बोलने की प्रवृत्ति, बच्चों में कार्य करने की प्रवृत्ति, रचनात्मकता की प्रवृत्ति इत्यादि इसी से आती है कि वो पाठ्यचर्या के अनुसार अपने को प्रेजेंट करते हैं। पाठ्यचर्या में दिए गए जो बिंदु होते हैं उससे उनमें प्रैक्टिकल वे में काम करने की क्षमता आती है और स्वयं को रिप्रेजेंट करना उन्हें आ जाता है। फिर बालकों में बता दिया आपको कि प्रस्तुतीकरण की दक्षता का विकास करने की बात आती है। इस प्रविधि में कुछ सोपान या चरण बताए गए हैं, जैसे सबसे पहले हम करते हैं समस्या को प्रस्तुतीकरण। समस्या का प्रस्तुतीकरण अर्थात बालक के समक्ष समस्या प्रस्तुत की जाती है, वह उसे अंडरस्टैंड करता है, समझता है। दूसरी बात, योजना का निर्माण किया जाता है। योजना का निर्माण करना, पुनः उसी समस्या पर क्रमबद्ध ढंग से हल प्रस्तुत करने के लिए वह योजना बनाता है ताकि उसका समाधान सही रूप से हो सके। तीसरा चरण आपका आता है कार्यविधि। योजना बनने के बाद निश्चित तौर पर बच्चा समस्या पर विधिपूर्वक कार्य करेगा, तो समस्या पर विधिपूर्वक कार्य करता है ताकि उसका सही निष्कर्ष निकाला जा सके। चौथा नंबर आपका आता है योजना का पर्यवेक्षण करना, अर्थात कार्य समस्या से बालक योजना का अवलोकन करता है। फिर लास्ट आपका आता है मूल्यांकन, अर्थात पुनः अन्वेषण एवं मूल्यांकन करके बालक सही निष्कर्ष पर पहुंचता है। इस प्रविधि में कुछ गुण भी हैं, कुछ दोष भी हैं। आते चलते हैं, पहले हम इस प्रविधि के कुछ गुण देखते हैं कि यह प्रविधि है क्या। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, क्रियाविधि या एक्टिव पाठ्यक्रम, एक्टिविटी करिकुलम, तो यह विधि बच्चे को एक्टिव रखने के कारण, सृजनशील रखने के कारण, रचनात्मक रखने के कारण मनोवैज्ञानिक विधि है। इसमें क्योंकि छात्र की जो आयु होती है, आयु एवं बुद्धि स्तर के अनुरूप उसको पाठन कराया जाता है, तो जब उस हिसाब से उसको शिक्षण सामग्री मिलेगी तो उसकी मानसिक भूख शांत होगी और वह क्रिएटिव भी होता चलेगा। दूसरी बात आपकी आती है स्वतंत्रता का वातावरण बनता है, क्योंकि बालक सहज रूप से ऐसे वातावरण में सीखते चलते हैं। जब माहौल मिलेगा तो बच्चा निश्चित ही अच्छा रिस्पॉन्स देगा। अगली बात आपकी आती है कि वह अभ्यास को गति प्रदान करता है और पुनर्बलन प्राप्त करके सीखने का मार्ग प्रशस्त करता चलता है। अर्थात वह पुनर्बलन प्राप्त करके जो सीखने का रास्ता है वह बनाता चलता है। चौथी बात आपकी आती है, यह चूंकि करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है, अतः छात्र अपने कार्य के प्रति निश्चित तौर पर क्रियाशील रहता है। नेक्स्ट, इस विधि से स्थायी ज्ञान प्राप्त होता है और यह विधि उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है। इससे प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होते हैं। इन सारी बातों से हम देखते हैं कि क्रियाशीलता वाली विधि, एक्टिव मेथड, अत्यंत उपयोगी है। लेकिन आप जानते हैं कि सिक्के के दो पहलू होते हैं। हम जहां गुण बताएंगे वहां हमें दोष बताना आवश्यक होगा, तो कुछ इस प्रविधि में दोष भी हैं। दोष के माध्यम से हम आपको ले चलते हैं इनका परिसीमन करने के लिए। जैसे सबसे पहली बात इसमें ये आती है कि इस प्रविधि में अध्यापक निष्क्रिय रहता है। जब बच्चा सक्रिय रहेगा तो अध्यापक निष्क्रिय रहेगा, लेकिन गाइडेंस तो देगा ही। दूसरी बात आपकी आती है, प्राथमिक स्तर पर इसका प्रयोग विशेष उपयोगी नहीं होता है। और तीसरी बात आती है कि प्रत्येक विषय को अगर चाहा जाए तो इस पद्धति के द्वारा पढ़ाना संभव नहीं है। अगली बात आपकी आती है कि प्रत्येक विषय के बालक इस विधि के पाठन में अगर इसी विधि से पढ़ाया जाए तो वो रुचि ले, यह आवश्यक नहीं। अर्थात प्रत्येक बालक इस विधि के पाठन में रुचि नहीं लेता। और अंतिम बात आपकी आती है कि इस विधि के प्रयोग से समय पर पाठ्य वस्तु समाप्त नहीं हो सकती। कारण कि जब बच्चा मनोरंजन महसूस करने लगता है मनोरंजन करने लगता है, आनंददायक फील करने लगता है, तो वहां हम देखते हैं कि उस आनंद अनुभूति के कारण थोड़ा सा समय इधर उधर भी हो सकता है। तो जो निश्चित सिलेबस को लेके पढ़ाने की बात है, वहां पे पाठ्य वस्तु निश्चित समय पर समाप्त नहीं हो सकती है, ये सारी समस्याएं भी इसमें आ सकती हैं। इस पाठ्यक्रम से कभी कभी अधिगम के जो कई महत्वपूर्ण पक्ष होते हैं वो भी छूट जाते हैं, और बालक विषय केंद्रित पाठ्यचर्या से अनुकूलित रहते हैं, इसलिए उन्हें क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम के लिए तैयार करने में शिक्षक को अत्यधिक मेहनत करनी पड़ती है। अनुकूल जो सामाजिक एवं शैक्षिक परिस्थितियां होती हैं उनके अभाव में क्रिया केंद्रित पाठ्यचर्या का क्रियान्वयन कठिन हो जाता है। क्रिया केंद्रित पाठ्यचर्या को सुचारू रूप से प्रस्तुत करने के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों का प्रायः अभाव सा रहता है। आजकल हमारे यहाँ उतने नहीं हैं, धीरे धीरे विकास होता चल रहा है कि हम एक्टिव हो रहे हैं, रचनात्मक कार्य करा रहे हैं, आपसे खुद कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें।